بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیز دوستو, اور وقت کی پابندی کے ساتھ آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں. میں ہوں آپ ہی, اور ہمارے ساتھ ہیں ہمارے عزیز دوست غیر خیری صاحب, اور ہم سب خیر خیریت سے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ بھی خیر خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے, کام وام کر چکے ہوں گے, اور اس وقت ہمارا پروگرام بڑے شوق سے دیکھ رہے ہوں گے. اور پتہ ہے میں بہت پریشان ہوں, میں نے اپنا پرس پتہ ہے کہیں رکھ دیا ہے اور مک ہو گیا ہے. مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا میں نے کہاں رکھا ہے. اس میں پیسے بھی تھے, اس میں میری کچھ ضروری چابیاں کارڈز وغیرہ بھی تھے. تمہیں پتہ میں نے کہاں رکھا ہے؟ ہاں نہیں تمہیں نہیں پتہ, تم نے کہیں دیکھا بھی نہیں ہے. ارے قسم کیوں کھا رہے ہو ولی, میں نے قسم کھانے کو چھوڑ ہی کہا ہے. میں کہہ رہی ہوں اگر تم نے دیکھا ہے تو مجھے بتا دو. ارے غلغلی, میں کہہ رہی ہوں قسم مت کھاؤ. ہاں بھائی میں کہہ رہی ہوں قسم مت کھاؤ, میں نے خالی پوچھا. غلغلی تمہاری نگاہ پڑی کہیں میرے پرس پر, کہیں تم نے دیکھا میں نے یہاں وہاں رکھ دیا. میں نے قسم کھانے کے لیے کہا. دیکھو میری بات سنو, جو بچے قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں مثال کے طور پر میں قسم کھا رہا ہوں میں نے کا پرس نہیں دیکھا, پتہ ہے کوئی ان کی بات کا اعتبار نہیں کرتا, کوئی ان کی بات کا بھروسہ نہیں کرتا, کہتا ہے شاید یہ جھوٹ کہہ رہا ہو. اور بار بار اگر ہم دیکھتے ہیں تاریخ کو پلٹ کر ہم دیکھیں, یا پھر ہمارے بڑے بزرگوں کی باتیں ہم سنیں, تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ قسم کھانا بری بات ہے. اگر آپ کو نہیں پتا بولو بھائی مجھے نہیں پتا, قسم قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ نہیں, لیکن تو خیر نہیں, یعنی جو لوگ قسم کھاتے ہیں کوئی بھی ان کی بات پر بھروسہ نہیں کرتا. کہتے ہیں شاید دال میں کچھ کالا ہے, شاید یہ چھپانے کی کچھ کوشش کر رہا ہے. ہاں صحیح, تم پھر قسم کھا لو, تم پھر قسم کھا لو, تم نے نہیں دیکھا. غلغلی قسم کھانا بہت بری بات ہے. نا 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 نا, تم نے سچ کہا, تم نے نہیں دیکھا. کیا میں نے اس سے آگے پوچھا؟ میں نے کہا خالی غلغلی اگر تمہاری نگاہ پڑ گئی ہو یہاں وہاں تو مجھے بتا دو, قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے اس میں. اور ویسے بھی اچھے لوگ اچھے انسان قسم نہیں کھاتے. کیوں؟ کیونکہ ان پر اتنا بھروسہ ہوتا ہے سب کو, اور ان کو اپنے آپ پر اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ ہم سچ کہہ رہے تو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے. ارے نہیں دیکھا تو نہیں دیکھا, کون سی زمین آسمان جو ہے آگے پیچھے ہو جائیں گی, اوپر نیچے ہو جائیں گی, ہے نا. تو دوستو آپ تو قسم وغیرہ نہیں کھاتے نا, اچھی بات ہے. اور پھر ہمارے دین پاک اسلام میں کہا ہے قسم کھانا ہم مسلمانوں کا کام نہیں ہے, ہمیں نہیں. دیکھیے ایک تو لوگ وہ ہوتے ہیں, وہ تو بہت ہی برے لوگ ہوتے ہیں جو جھوٹ کہنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں, ایک بات کو چھپانے کے لیے قسم پہ قسم کھاتے جاتے ہیں. اور ایسے لوگ کہ نہیں, پتہ ہے ایک بار مجھے یاد ہے میری نانی امی مجھے بتا رہی تھیں کہ جھوٹ کبھی بھی نہیں چھپتا, آپ لاکھ قسمیں کھا لیں, آپ لاکھ چھپانے کی کوشش کریں, جھوٹ سامنے آ جاتا ہے. قسم کھانے کی کیا اس میں مطلب, آپ قسم بھی کھائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ ارے وہ دیکھو وہ جھوٹا انسان پہلے بھی قسمیں کھا رہا تھا آج بھی قسمیں کھا رہا ہے. لیکن جس انسان کو اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے, بھروسہ ہوتا ہے, اپنی بات پر یقین ہوتا ہے, اسے یقین ہے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ ٹھوس ہے اور میں ثابت کر دکھاؤں گا. کہاں فٹ بال میچ ہے تمہارا؟ چلو تمہیں میں بھیجتی ہوں فٹ بال میچ کے لیے, لیکن تھوڑا سا حصہ رہ گیا دوستوں کے ساتھ, ٹھیک ہے؟ میں بات کر لوں پھر تم چلے جاؤ, ٹھیک؟ تو جس کو اپنی بات پر پورا یقین ہوتا ہے, اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا, تو وہ قسم ہی نہیں کھاتا, ڈٹ کر اپنی بات کرتا ہے سچی سچی. اور کہتے ہیں نا وہ سچی سچی کھری کھری بات, اور لوگوں کے دل جیت جاتا ہے اپنی باتوں سے. خیر فلفلی کو جانا ہے فٹ بال میچ کے لیے, میں جا کے تیاری کرواتی ہوں ان کی, آپ دیکھیے ایک حصہ, ٹھیک ہے؟ چلو یہ آپ کو چاہتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے پیارے بچوں. بچوں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص تھا جو اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک بچہ دے دے, کیونکہ اسے بچے بہت زیادہ پسند تھے. پھر آخر ایک دن اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی پیارا خوبصورت سا بچہ اسے دے دیا. جب اس کے پاس یہ بچہ نہیں تھا تو بچوں وہ شخص جو تھا ایک نیولے کے ساتھ رہا کرتا تھا, اور اس نیولے کے ساتھ اس کی بڑی دوستی تھی. جب اس شخص کے پاس اتنی دعا کرنے کے بعد بچہ آ گیا تو وہ بہت ہی خوش ہوا, اور اس نے کیا کیا کہ نیولے کو بچے کی حفاظت پر مامور کر دیا, کیونکہ اسے گھر سے باہر بھی جانا ہوتا تھا کھانے وغیرہ کا انتظام کرنے کے لیے. جب جب وہ شخص گھر سے باہر جاتا تھا نیولا جو ہے وہ بچے کی حفاظت کیا کرتا تھا. ایک دن اس شخص کا دوست اس سے ملنے آیا اور کہنے لگا کہ تم نے نیولے کو بچے کی حفاظت پر مقرر کیا ہے, اگر کسی دن اس نے حملہ کیا اور بچے کو کھا لیا نقصان پہنچا دیا تو؟ शख्स कहने लगा, नहीं नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, ये नेवला तो मेरा दोस्त है, बचपन से मेरे साथ है और ये बिल्कुल भी दूसरे हैवानों की तरह नहीं है, ये तो बहुत ही आराम से रहता है, मेरे बच्चे का ये तो बहुत ख्याल रखता है। फिर आखिर इसका दोस्त चला गया, लेकिन इस शख्स के दिल में एक वसवसा पैदा हो गया। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि ये शख्स घर से बाहर गया किसी काम से, इतने में एक बहुत बड़े सांप ने बच्चे पर हमला कर दिया। अब नेवले ने क्या किया, नेवले ने सांप के साथ लड़ाई की और सांप को मार दिया। लेकिन इस सारे में हुआ ये कि नेवले के मुंह पर और हाथों पर सब जगह बहुत सारा खून लग गया। जैसे ही वो शख्स घर पर वापस आया, नेवले को जैसे ही आवाज आई कि इसका मालिक अंदर आना ही चाहता है, वो भाग भाग कर दरवाजे पर गया ताकि मालिक को अपना कारनामा बता सके कि किस तरह से आज उस बच्चे की जान इस नेवले ने बचाई है। लेकिन मालिक इससे पहले कि नेवले की कोई बात सुनता, जैसे ही उसने देखा कि नेवले के मुंह पर और हाथों पर बहुत ज्यादा खून लगा हुआ है, वो सोचने लगा कि यकीनन आज इस नेवले ने मेरे बच्चे पर हमला कर दिया। और ये सोचते ही उसने एक डंडा उठाया और जोरदार डंडा नेवले के ऊपर मारा। इतनी देर में इसे अपने बच्चे के रोने की आवाज आई। जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज आई, सोचने लगा कि अरे मेरा बच्चा तो जिंदा है। भाग कर अंदर गया तो क्या देखता है कि बच्चा तो सही सलामत मौजूद है और साथ ही पड़ोस में ही एक मरा हुआ सांप जो है वहां पर पड़ा हुआ है। तब उसे अंदाजा हुआ कि इस नेवले ने तो मेरे बच्चे की जान बचाने की खातिर इस सांप से लड़ाई की है और मैंने इस बेचारे को ही इतनी जोरदार डंडा मार दिया। बिलाखिर उस शख्स ने जो है वो नेवले को पानी वगैरह पिलाया, उसको होश दिलाया और फिर उससे माफी मांगी। तो बच्चों, हमें भी इस कहानी से ये सबक हासिल करना चाहिए कि कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि तमाम चीजों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए और इसके बाद किसी फैसले पर पहुंचना चाहिए। अगली कहानी तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
अजीज दोस्तों को खुश आमदीद कहती हूँ उनके अपने प्रोग्राम में और उम्मीद करूंगी ये प्यारा सा, मुफीद सा, बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही खूबसूरत सा, मजेदार सा हिस्सा जो हमारे अजीज साथियों ने काफी मेहनतों के बाद, काफी जहमतों के बाद आपके लिए तैयार किया है, आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। जी हाँ, मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद आया, जबरदस्त। गिलहरी, हाँ गिलहरी, यार वो फुटबॉल उसने कहा था उसके दोस्त का इंतजार कर रहे हैं, कोई मैच मैच बता रहा था मुझे। खैर, गिलहरी तो गया है उनके साथ फुटबॉल मैच खेलने और मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह वो जरूर जीत कर वापस आएगा और अपना नाम और अपने दोस्तों का नाम बुलंद करेगा। हम बात कर रहे थे, वो आपको याद है ना, मेरा पर्स गुम गया था, गुमा नहीं था, मैं खुद कहीं रख के भूल गई थी और मैंने ऐसे बेचारे गिलगिली से पूछ लिया कि गिलगिली मियाँ कहीं आपने मेरा पर्स देखा नहीं हो, पता नहीं वो मेरी बात का क्या मतलब समझ बैठा और कसमें खाने लगा, कहने लगा अरे आप ही, मैं कसम खाता हूँ मुझे नहीं पता आपकी पर्स कहाँ है, मैं कसम खाता हूँ मुझे नहीं पता कि आपका पर्स आपने कहाँ रखा है। मैंने एक सादा सा सवाल पूछा, मैंने कहा गिलगिली कहीं आपने देखा है, इसमें कसमें खाने की क्या जरूरत है। देखो दोस्तों, अगर सच में आपको कुछ नहीं पता, इसमें कसमें खाने की जरूरत नहीं है। मिसाल, आपकी जान की कसम, उसकी जान की कसम, इसकी जान की कसम, मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता, मुझे तो बिल्कुल इस बारे में नहीं पता। सीधे साधे तीन चार अल्फाज, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं, या मैं जानता ही नहीं इस बारे में। सही, इसमें इन तीन जुमलों में जो मैंने भी कहा कहीं कसम वगैरह थे? नहीं, आपको अपनी बात को इतनी यकीन के साथ कहना होगा कि सामने वाला जो है वो आपकी बात पर यकीन कर सके। मिसाल के तौर पर अगर आप कह रहे हैं मैं कसम खाता हूँ कि मुझे नहीं पता, तो लोग क्या कहेंगे, दाल में कुछ काला है, क्योंकि कसमें खाने वाले लोगों पर कोई भी भरोसा नहीं करता। पता है, मुझे याद है कि हमारे स्कूल में एक बच्चा था, वो हर बात पर कसम खाता था। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, हाँ उसने एक बार अपना होमवर्क नहीं किया, हाँ हाँ बिल्कुल साइंस के सब्जेक्ट का होमवर्क करके वो नहीं लाया। टीचर ने पूछा बेटा आप क्यों होमवर्क करके नहीं लाए, वो कहने लगा कसम से टीचर कल मेरी नानी अम्मी की तबीयत खराब थी। टीचर ने कहा चलो ठीक है एक बार। फिर दूसरे दिन मैंने देखा, अरे बाबा वो अपने उर्दू का होमवर्क करके नहीं लाया। फिर टीचर ने कहा बेटा आप क्यों अपना काम करके नहीं लाए, कहने लगा कसम से टीचर फिर से मेरी नानी अम्मी की तबीयत खराब है। अरे एक दिन दो दिन कसमों पे कसमें, कसमों पे कसमें खाता गया और फिर टीचर को होने लगा शक उस पर, कहने लगी दाल में कुछ काला है, हर रोज नानी की तबीयत खराब, हर रोज कसमों पे कसमें, ठीक फोन घुमाया उसके घर पर और पकड़ी गई जनाब की चोरी सही और उठाया गया उसको बताया गया कि हाँ भाई देखो तुम्हारी तो अम्मी कह रही है कि तुम्हारी नानी तो वो अपने किसी गांव वाँव में है और वो बिल्कुल हशाश पशाश ठीक है और तुम कह रहे थे कि मेरी नानी मेरे घर पर है और हमें रोजाना उनको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, बेचारी बहुत ज़यीफ़ है और बहुत बीमार है। देखा कसम खाने का नतीजा। लेकिन अगर पहले ही दिन वो कह देता कि टीचर मुझसे काम नहीं हुआ, मैं कर नहीं पाया, लेकिन कसम नहीं खाता और सीधी और खरी बात कहता तो क्या होता, उसकी बात पर टीचर भरोसा करती। दूसरे दिन अगर अपना होमवर्क करके ले आता, चलो टीचर एक दिन माफ करे कि दो दिन, लेकिन दूसरे दिन तो अपना होमवर्क करके ले आता तो क्या, सीधी खरी बात डायरेक्ट इंसान के सर में जाती है ठीक, लेकिन कसमें और गुमा फिरा के यहाँ वहाँ मामला बिगड़ जाता है। चलिए दोस्तों आप देखिए हिस्सा और मैं आपका यहीं पर इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से वापस आइएगा ठीक है। शामदीद कहती हूँ एक बार फिर, और जी हाँ मैं यहीं पर खड़ी हूँ और आपका इंतजार कर रही थी कि मेरे दोस्त जल्दी जल्दी वापस आए ताकि प्रोग्राम को मिलकर आगे बढ़ा सके। ओह तुम भी आ गए खेल खेली, अच्छा तुम जल्दी क्यों आए हो, भाग भाग कर आए हो, अच्छा तुम फुटबॉल खेल रहे थे, हाँ तुमने लात मारी, ओ गिलगिली कह रहा है कि इतनी जल्दी इसलिए वापस आए हैं, ये लोग फुटबॉल खेल रहे थे, इन्होंने किक मारी और फुटबॉल गया कहाँ, पड़ोसी के घर में जी उनके सहन में, और गेम खत्म, पैसा हजम और यहाँ पर आए हैं गिलगिली साहब। चलो लेकिन तुमने खटकाने की कोशिश नहीं की बॉल वापस दे, तुम यहाँ आ गए, चलो खैर कोई बात नहीं, अब यहाँ पर आ गए हो तो दोस्तों के साथ प्रोग्राम ही हम कर लेते हैं ठीक है ना। हाँ हाँ बोल देते, अरे पंटी का फोन है मेरे ख्याल से। हेलो अस्सलाम वालेकुम बंटी बेटा, कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ, दोस्त ठीक हैं, सब ठीक हैं। कौन? हाँ गिलगिली, हाँ यहाँ खड़ा है, मेरी तरफ से खुदाफिस, मैं फोन देती हूँ गिलगिली को ठीक है। गिलगिली बंटी का फोन है, इसके दोस्त का फोन है। बोल, मैंने नहीं, कसम खा रहा, मैंने बॉल नहीं देखी, अरे अभी तो उसने कहा था कि हो, पूछे गिलगिली तुमने बंटी को कहा कि तुमने बंटी की बॉल नहीं देखी, हो तुमने झूठ कहा और झूठ के ऊपर तुमने झूठी कसम खाई, मुझे अभी बता रहे थे कि बॉल गई हमसाए के घर में और तुम झूठ कह रहे हो, गिलगिली कितनी बुरी बात है। दोस्तों यहां मैं बताई जा रही हूं, बोले जा रही हूं दोहराती जा रही हूं, कसम खाना बुरी बात, तुमने दो काम किए, झूठ मैंने नहीं देखा बॉल खाए, दूसरी बात कि तुमने कसम झूठी खाई कि तुम्हें नहीं पता, क्यों बताओ, बताओ बताओ मैं सुन रही हूं। तुम्हारा दोस्त बंटी उसकी बॉल गई हमसाए के घर। हाँ तो फिर तुमने झूठ क्यों कहा उससे, झूठी कसम क्यों खाई तुम्हें? अच्छा इसको लगा मैं इसे डांटूंगी, इसको लगा कि मैं इसे कुछ कहूंगी। और मेरे ख्याल से और बात यह है कि इन जनाब को वो बॉल तुम्हें पसंद है, तुम्हें वो बॉल पसंद है, तुम्हें वो बॉल पसंद है तो तुम झूठ कहोगे। तुम्हें वो बॉल पसंद है तो वो बॉल अपने वालदेन को दिखाकर उनसे दरख्वास्त कर कर कि मुझे ये बॉल दिला दो, इसका ये मतलब तो नहीं कि हम झूठ बोले। हाँ बुरी बात, पता है गलगली तुमने दो बुरे काम किए, झूठ बोला, झूठी कसम खाई, तुम्हें पता है इसका नतीजा क्या होने वाला है? अल्लाह ताला हमसे कितने खफा होंगे, कहेंगे देखो गलगली झूठ तो कह रहा है फिर झूठी कसमें खा रहा है। और तुम्हारा दोस्त बंटी अगर उसे पता चल जाए कि वो बॉल हमसाए के घर में जाके गिरी है, तुमने अपनी आंखों से देखा है, तो वो तुमसे कितना नाराज होगा, वो तुमसे कितना गुस्सा होगा, उदास होगा, तुमसे खफा होगा, कहेगा जाओ भाई मैं तुमसे और कभी बात नहीं करूंगा। तो क्या हम चाहते हैं कि हमारे दोस्तों का भरोसा हमसे उठ जाए? नहीं ना। अरे सीधी बात कहते, हाँ बंटी मैंने देखा तुम्हारी बॉल हमारे किक मारने से गई हमसाए के घर, बेचारा जाके खटखटाता अपना बॉल ले लेता, झूठ बोलने की क्या जरूरत है? हाँ तुम जाओ उसको सच सच बताओ कि मैंने देखा है तुम्हारा बॉल कहाँ है, और उसको लेकर जाओ अपने साथ। बिल्कुल दोस्तों, ये साहब जाएंगे बॉल वापस लेकर आएंगे, मैं यहाँ करूंगी इंतजार। चलो तुम जाओ, मैं यहीं खड़ी हूँ। शाबाश।
प्यारे प्यारे बच्चों, हम खास तौर पर उन बच्चों के लिए लेकर आए हैं एक ऐसी चीज के जो हमेशा खूबसूरत दिखना चाहते हैं और चाहते हैं कि इनकी जिल्द हमेशा साफ सुथरी और खूबसूरत नजर आए। उनके लिए हम लाए हैं एक मजेदार सी चीज के जो खाने में भी बहुत मजेदार होती है और जिसके फवायद भी बेतहाशा है। जी हाँ, आज हम आपसे बात करेंगे खट्टे खीरे के बारे में या फिर अचार वाले खीरे के बारे में। अब आप पूछेंगे कि भला ये क्या चीज होती है? बच्चा आपने अक्सर दुकानों में देखा होगा कि छोटी छोटी शीशियों में सिरका डला हुआ होता है और उसके अंदर छोटे छोटे साइज के खीरे होते हैं। बच्चों ये अचार वाले खीरे होते हैं कि जिन्हें अक्सर खाने के साथ इस्तेमाल किया जाता है और जो बहुत ही मजेदार होते हैं। मजेदार होने के साथ साथ इनके अंदर बहुत ज्यादा फायदे भी पाए जाते हैं। बच्चों ये खट्टे खीरे बहुत ज्यादा मजेदार होते हैं और फवायद में तो लाजवाब होते हैं। ये भी अचार की तरह खानों के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं और खानों का लुत्फ दुबाला कर देते हैं। इनमें मैग्नीशियम और सेलुलोज पाए जाते हैं और ये अज्जा हमारे जिस्म की नशोनुमा के लिए बहुत जरूरी होते हैं। बच्चों ये कीड़े जिस्म को ठंडा करते हैं, मुख्तलिफ गजाओं से हासिल होने वाले विटामिन को जिस्म में बेहतर तौर पर जज्ब होने में मदद करते हैं। बच्चों ये खट्टे कीड़े या अचार वाले कीड़े खून को साफ करते हैं और आप जानते हैं कि अगर खून साफ होगा तो जिल्द भी खूबसूरत नजर आएगी, नरम मुलायम हो जाएगी और चमकदार हो जाएगी और जिल्द के साथ साथ बालों की नशोनुमा भी बढ़ जाएगी। बच्चों ये खट्टे कीड़े या सिरके वाले कीड़े थकन और बेहाली को दूर भगाते हैं, चाकू चौबंद कर देते हैं और हमारी एनर्जी लेवल को एकदम से बढ़ा देते हैं, जिसके बाद ना कोई थकन रहती है और ना ही कोई परेशानी। क्या आप जानते हैं कि ये खट्टे खीरे सरदर्द का तबीई इलाज हैं? अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो दो खीरे लें और खा लें और अपने सरदर्द को दूर भगाएं।
शामदीद कहती हूँ आपको। एक बार फिर मैं यहाँ पर खड़ी थी और मैंने कहा कि गलगली साहब जाइए, फौरन जाइए, दोस्त को सच बताइए और बॉल से वापस लेकर उसको वापस दीजिए। बिल्कुल, क्या हुआ नतीजा बताओ मुझे जल्दी, मैं सुन रही हूँ। तुम नकल उतारो मेरी, तुम्हें यहाँ पर उदास खड़ा होना चाहिए, तुम झूठी कसमें खा रहे थे और तुम नकलें उतारियो मेरी। चलो बताओ क्या हुआ। हाँ 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 सही, मैंने कहा था जाकर, सही, मेरी किताब, हाँ मेरा पर्स वो मिल गया मुझे। हाँ तुम जब गए थे ना फुटबॉल खेलने, मैंने टेबल पर रखा था, मैं भूल गई थी। हाँ सही, अब तुमने क्या किया तुम बताओ। तुम गए, तुमने दरवाज़ा खटखटाया अपने दोस्त बंटी का और उसे कहा, दरवाजा खोला, कहा अरे गिलगिरी तुम, फिर दरवाजा बंद करने लगा, तुमने कहा रुको रुको रुको, फिर तुमने कहा बंटी मैं माफी चाहता हूँ, फिर उसने क्या कहा, कहा अंदर आओ मेरी अम्मी ने कुछ मजे का बनाया है, ठीक हम लोग साथ गए, अच्छा फिर हमने पड़ोसी के घर का दरवाजा खटखटाया और कहा अंकल हमारी बॉल आपके सैन में थी, उन्होंने उठाकर आपको दिया और फिर बात खत्म, दोस्ती पक्की जबरदस्त। तो ये काम तुम्हें पहले कर लेना चाहिए था, है ना, तुम्हें ये काम पहले करना चाहिए था, तुम्हें झूठी कसम खाने की कोई जरूरत नहीं थी, तुम्हारे साथ बहस करके मेरा गदा बैठ गया ये गदगदी। खैर मैं कह रही थी आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि हमेशा खरी बात करनी है, जो दिल में है जो जहन में है सच्ची सच्ची आपकी जबान पर आए, गोल मटोल करने की जरूरत नहीं है, कुमारे फिराने की जरूरत नहीं है, कसम खाने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो बच्चे शाबाश कह रहे कि कोई भी कसम ना खाए वरना अल्लाह ताला नाराज होंगे, एक बात बताओ अल्लाह ताला सिर्फ उन बच्चों को चाहते हैं, ओ तुमने अल्लाह ताला से भी माफी मांगी, शाबाश शाबाश, तालियां तालियां गिलगिली के लिए, दो बातों के लिए, माफी मांगने के लिए और फिर अल्लाह ताला से भी माफी मांगने के लिए, शाबाश। और अल्लाह ताला जो हमें 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है अपनी बाहें फैलाकर कहेगा गिलगिली मैंने तुम्हें माफ किया, क्यों, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, शाबाश गिलगिली अच्छे बच्चे। और यही अच्छे बच्चे की निशानी है गिलगिली, जो बच्चे कस्में खाते हैं अल्लाह ताला तो उनको नापसंद करता ही है, उनके वालदेन उनकी अम्मी उनके अब्बू उनसे हमेशा सख्त खफा रहते हैं और बिल्कुल भी किसी बात का भरोसा नहीं करते, कहते हैं अम्मी कसम से आज मुझे होमवर्क नहीं मिला, अम्मी कसम से आज मैंने स्कूल में कुछ ऐसा वैसा पढ़ा ही नहीं ताकि मैं स्कूल में होमवर्क कर सकूं। और अम्मी जब जाती हैं स्कूल का बैग खोलती हैं, क्या हुआ, हाँ बिल्कुल अच्छा मेरी बात सुन रहे हैं, और अम्मी जब जाती है स्कूल का बैग खोलती और देखती है कि बच्चे ने झूठ तो कहा और झूठ के साथ झूठी कसम, बुरी बात बिल्कुल, तो वालदेन भी नाराज अल्लाह ताला भी नाराज। आप और हम, ओह गिलगिली कह रहा है कि वो, अच्छा मैं कहूँ, अच्छा ऐसे आपको बहुत चाहता हूँ, एक बार फिर आप, नहीं आपको बहुत चाहते हैं, हम दोनों चाहते हैं आपको, और हमेशा कोशिश रहती है कि हम क्या अच्छी बातें आपको सिखाएं, कभी कभार गिलगिली थोड़ी बहुत गलतियां कर जाता है लेकिन आखिर में मेरी बात सुनकर और अपनी गलती को मानकर और फिर उसे सुधार कर प्यारे बच्चे की तरह मेरे साथ यहाँ खड़ा होता है। प्रोग्राम का वक्त हो रहा है ख़त्म, हमें जाना है अपने घरों को, आपने जाना है अपने कामों को यानी होमवर्क के लिए, तो फिर अपना ख्याल रखिएगा, अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।